समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको विजयदशमी की अनंत शुभकामनाएं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर होगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं रेनु कटारिया। नमस्कार रेनु।
हेलो अलका एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड एज अलका आपने अभी अभी सबको विजयदशमी की बधाइयां दी हैं, इसी तरह हम भी बोलना चाहते हैं, मे दिस दशहरा ब्रिंग यू जॉय, पीस एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इन योर पाथ एंड लेट द लाइट ऑफ गुड शाइन ब्राइट इन योर लाइफ। वी विश यू डियर लिसनर्स एंड योर लव्ड वंस अ वेरी हैप्पी विजयदशमी।
बिल्कुल।
And Alka, let's start with the news headlines. Defense Minister Rajnath Singh inaugurates 75 project infrastructure projects worth 2,236 crore rupees constructed by Border Roads Organization.
रेलवे ने चेन्नई के कवरपेट्टे में ट्रेन दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यातायात की बहाली का कार्य जोरों पर।
न्यू हरियाणा गवर्नमेंट टू बी स्वॉन इन ऑन 17th अक्टूबर।
देशभर में आज विजयादशमी और दुर्गा पूजा मनाई जा रही है।
यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसेस सैंक्शंस ऑन ईरान्स एनर्जी सेक्टर फॉलोइंग तेहरान्स मिसाइल अटैक्स अगेंस्ट इजराइल।
और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में खेला जाएगा।
And Alka, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we are talking about Vijayadashmi.
Bilkul.
So welcome to our broadcast celebrating Dashera, also known as Vijayadashmi, which is being celebrated today. This vibrant festival holds a special place in the hearts of millions across India and beyond, marking the triumph of good over evil. And Alka, on this auspicious day, क्यों मनाते हैं हम? We commemorate the legendary victory of Lord Ram over King Ravan. As dusk approaches, cities and villages across the nation come alive with colourful festivities. Effigies of Ravan, along with his brothers Kumbhakaran and Meghnad, are constructed and displayed in public spaces. Families and friends gather, excited to witness this grand spectacle of fire and light. With the setting sun, the air fills with anticipation. The moment arrives when Lord Ram, played by local actors, aims his arrow at the towering effigies, igniting them in flames. The crackling fire symbolizes the destruction of evil and the renewal of hope. It is a sight to behold. Spectators cheer as Ravan's defeat is celebrated, reminding us all good will always triumph.
बिल्कुल। और हम जानते ही हैं, जैसा कि आपने भी कहा, कि सत्य की असत्य पर सदा विजय होती है। और दशहरा भगवान श्री राम की रावण पर जीत का उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। उत्सव उत्साह और ऊर्जा से भरपूर ये दिन लोगों में नया उमंग और जोश भर देता है। और प्रकृति में भी रेणु आप देखती होंगी कि
एक
पूरा एक चेंज, हाँ, और एक वो जो जब हमें उत्साह दिखता है तो वो प्रकृति में भी वो उत्साह या प्रकृति का उत्साह जो है वो हमें भर जाता है। बिल्कुल, ये इंटरचेंज होता है। और हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं में से एक रामलीला का मंचन तो होता ही है। और कस्बों और गांव में नाट्य प्रदर्शन महाकाव्य रामायण को जीवंत कर देते हैं। और भगवान श्री राम, सीता और हनुमान के रूप में सजे कलाकार जो हैं वो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते
हैं। एंड आर वी गेटिंग अ लिटिल नॉस्टैल्जिक हियर अलका, हमें अपना बचपन याद आ रहा है। और अभी भी कभी जब मौका मिलता है तो हम रामलीला जरूर देखने जाते हैं।
आज भी जब हम लोग आ रहे थे रेडियो के लिए आ रहे थे तो जो गदा है ना, इस तरह के जो छोटे छोटे खिलौने होते थे और हनुमान बन के
जी
तीर और धनुष लेकर के श्री राम बन के बहुत अच्छा लगता था।
बिल्कुल।
तो आज भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और ताकि समाज में सामंजस्य, सौहार्द, सद्भाव, संवेदनाएं जो हैं वो कायम रह सके। जबकि लोग कहते हैं कि नहीं, बार बार इसे देखने से क्या होता है, बार बार इसे देखने से ये होता है कि जो चीजें हम भूल जाते हैं या जो कहीं अंदर दब जाती है, उसको जब हम राम और भरत का मिलाप देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, भाइयों में लड़ाई तो होती है लेकिन फिर भी एक ऐसा भाई भी तो हुआ था। और या पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें, पिता पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, माता और पुत्र का संबंध क्या होना चाहिए, इस सब को लेकर.
एंड इट इज ऑलवेज बेटर, यू नो, अगर हम वैसे भी देखें कि हर चीज अगर दोहराई जा रही है या उसे कई बार हम देखते हैं या सुनते हैं, तभी वो हमारे माइंड में वो रजिस्टर कर पाते हैं हम उस
चीज को. बिल्कुल. और ये हमारे जो जो दशहरा है वो एक त्योहार ही नहीं है, ये हमारे मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतिबिंब है और ये हमें अपने अंत की यात्रा करने और जीवन को भरपूर जीने का, उसके लिए हमें ये तैयार करता है.
बिल्कुल.
और लेकिन एक बात और है रेणु, कि हमें ये भी अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में जिन चीजों की हम बातें करते हैं कि करुणा है, त्याग है, साहस है, इन सबकी जो हम सिद्धांतों की बातें करते हैं वो हम सिर्फ बातें ही करते हैं या उसे हम चरितार्थ भी करते हैं.
बिल्कुल.
और सबसे अच्छी बात यह है कि दशहरा में जब हम अपने परिजनों के साथ एकत्र होते हैं और फिर वो पूरा एक फेस्टिव मूड होता है, पहनना, उड़ना, घूमना, फिर
खाना
पीना. बिल्कुल. और ये जो सहभोज और प्रीति भोज जो एक साथ बैठ करके हम खाते हैं, ऐसे तो ठीक है हम खाते हैं, लेकिन जब हम एक साथ बैठ के खाते हैं तो बहुत सी चीजें बनती हैं और वो जो एक परंपरा, एक डोर होती है जो हम सबको बांधती है.
बिल्कुल.
और इसकी गांठ बड़ी मजबूत होती है.
सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो डिलिशियस फूड सच एज जलेबी, लड्डू, बर्फी, विच वी आर ऑलवेज शेयरिंग विद आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, विच इज ऑल्सो रीइंफोर्सिंग द बॉन्ड्स ऑफ लव एंड टुगेदरनेस.
बिल्कुल. और जो स्थानीय मेले होते हैं ना, अगर आप बहुत सुदूर गांव में जाएं, मेट्रो में की तो मेट्रो सिटीज की बात नहीं, सुदूर गांव में जाएं और वहां के जो मेले होते हैं और उसमें जब वो पिता के कंधे पे चढ़ के जो बेटा मेला देख रहा, पुत्र या पुत्री जो भी है, बेटा बेटी, अगर वो मेला, वो जो एक सुख होता है ना, वो जीवन भर याद रहता है अगर किसी ने वो सुख देखा हो तो.
हाँ जी, हाँ जी.
तो इस तरह की चीजें और मेले में जरूर ले जाएं बच्चों को, ताकि वो बच्चे जो हैं वो जीवन के हर रस को पी सके और उसको जी सके.
एंड यू टॉक्ड, यू स्पोक अबाउट द मेला, सो वी आर टर्निंग आवर अटेंशन टू द कल्चरल फेयर्स दैट स्प्रिंग अप ड्यूरिंग दिस टाइम. दे आर फिल्ड विद कलरफुल स्टॉल्स, लोकल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस. और अलका, इस टाइम मौसम भी इतना सुहाना होता है कि आपको मेले में जाने का मन करता है. गर्मियों में भले ही आप नहीं निकलना चाहते हैं घरों से बाहर, पर ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट वही मौसम है जो आपको चाहिए, जहां पे आप मेला देखने जाना चाहते हैं.
भारत अगर त्योहारों का देश है तो वो ऐसे ही नहीं है ना, जो ऋतु परिवर्तन है उसके साथ ही आपके खान पान में परिवर्तन, त्योहारों में परिवर्तन और उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए.
बिल्कुल.
मतलब क्या वर्जित है और क्या खाना चाहिए, ये दोनों चीजें चलती
yes,
हैं.
बिल्कुल. सो मेनी पीपल एंजॉय शॉपिंग फॉर ब्यूटिफुल आइटम्स एंड इंडल्जिंग इन स्ट्रीट फूड. एंड एज वी सेलिब्रेट, लेट अस ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द डीपर मैसेज ऑफ दशहरा, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर वॉट इज राइट एंड जस्ट इन आवर लाइव. इट एनकरेजेस अस टू कन्फ्रंट आवर ओन चैलेंजेस with courage and integrity.
और दशहरा जो है वो पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है, विभिन्न तरीके से मनाया जाता है. और रामलीला सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक होती है. रामलीला में जो भगवान राम के जीवन को प्रदर्शित करती है, उनके वनवास को, रावण पर उनकी जीत और ये सब चीजें जो होती हैं, वो तरह तरह से मतलब मनाया जाता है. और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जो हमारे साउथ
एशियन कंट्रीज हैं
वहां पे भी बहुत अच्छे से रामायण को मनाया जाता है.
yes.
और दशहरे पर बुराई, वो तो विनाश का प्रतीक जो रावण है जो, और कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन सबके पुतलों का दहन किया जाता है, आपने भी बताया, और आतिशबाजी की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं और पूजा होती है और सिंदूर खेला भी होता है, आप भी जानती हैं, हम
yes.
सब जानते हैं. और ये बहुत अच्छा होता है अगर आप कभी कोलकाता गई हो और उसमें जब इसे खेलते हैं, जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो सिंदूर लगाती हैं एक दूसरे को और ये सिंदूर खेला बहुत बढ़िया होता है. और फिर उसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति को जलाशय में विसर्जित करके उनको विदाई दी जाती है कि आप जाएं और फिर अगले बरस जो है
दोबारा
आए. और कुल्लू दशहरा भी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा में जीवंत मेले और उत्सव होते हैं, जिसमें अब कुछ समुदायों में रावण के पुतला जलाना भी शामिल हो गया है.
सो बेसिकली यू नो इट इज पैन इंडिया. आप ये सिर्फ ये नहीं मानिए कि ये सिर्फ हम नॉर्थ में ही बना रहे हैं या ऐसी जगह. आप कुल्लू देखिए, आप कोलकाता देखिए, आप बाकी स्टेट्स में देखिए, हम बहुत अच्छे से विजयदशमी के फेस्टिवल को
बिल्कुल
बहुत
और,
अच्छे से मनाते हैं.
और जो लोग कहते हैं कि नहीं भारत एक कैसे है, तो ये जो अंतरधारा बहती है ना, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, बिल्कुल हम इसी तरह से एक साथ, इसी ढंग से हम एक साथ जो है वो बंधे हुए हैं और ये एकता का जो सूत्र है वो हमें आनंदित भी करता है।
बिल्कुल।
और मैसूर की बात करें, मैसूर दशहरा की बात करें, तो मैसूर में दशहरा भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें शाही परिवार घोड़ों, हाथियों और हथियारों का प्रदर्शन करता है, जैसे कि कल भी आयुध पूजा की जाती है। बिल्कुल, अस्त्र और शस्त्र, मतलब शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों ही पूजे जाते हैं।
एंड इन मैसूर आई थिंक इट हैज बीन कमिंग डाउन सिंस द 14th एंड द 15th सेंचुरी। अगर आप देखें मैसूर का जो दशहरा है वो काफी पुराना है,
बहुत पुराना है, और इसकी जो परंपराएं हैं वो आज भी, ये पूरा जो पर्व होता है दुर्गा पूजा का
जी,
जो पूरे 9 दिन होते हैं, ये एक तरह से शक्ति संचय का पर्व होता है।
बिल्कुल,
है ना।
And today being the 10th day, it is called विजयदशमी।
बिल्कुल, और वो उसी तरह से है जैसे नेचर कैसे इवॉल्व होती है ना, उसी तरह से पहली, दूसरी, तीसरी शैलपुत्री से करते करते जो हम सिद्धिदात्री
तक,
बिल्कुल, तो ये पूरी एक यात्रा होती है हमारी, और उसी में ये आयोजन माँ चामुंडेश्वरी का सम्मान करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने महिषासुर को का वध किया था। बिल्कुल।
सो मूविंग ऑन फ्रॉम विजयदशमी, अलका चलते हैं अब अगले अपने सेगमेंट पे, विच इज वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, बर्थ डे टुडे। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे, वी विल एक्सप्लोर अ क्रूशियल सीन फॉर अर फेदर्ड फ्रेंड्स, द वाइटल रोल इंसेक्ट्स प्ले इन देयर सर्वाइवल एंड द ग्रोइंग कंसर्न ओवर डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैं एक और चीज एड करना चाहूंगी कि देर हैज बीन अ रिपोर्ट, स्टडी ने शो किया है कि एक परसेंटेज है जहां पर कि द इंसेक्ट पॉपुलेशन इज डिसअपियरिंग ईच डेकेड, इट इज देयरफॉर लिटिल वंडर दैट द माइग्रेटरी इंसेक्ट ईटिंग बर्ड स्पीशीज आर आल्सो डिक्लाइनिंग।
बिल्कुल, वो तो उसका भोजन है, और अगर भोजन ही नहीं होगा तो पक्षी भी रहेंगे कैसे।
जी बिल्कुल।
और ये जो नेचर है ना रेनु, ये बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें हम सोचते हैं कि इतना छोटा सा कीड़ा
क्या,
लेकिन
हाँ
क्या कर सकता है, लेकिन उस एक कीड़े के भी अपनी एक पूरी चेन है, अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा, मतलब एक पूरा, और वो बीच में से अगर कड़ी गायब होती है तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है नेचर के लिए।
या सो यू नो वी आर कमिंग डाउन टू द इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग विच थ्रेटन्स द माइग्रेटरी बर्ड्स, तो हम वही बोल रहे हैं कि एक कीड़ा क्या कर सकता है,
बहुत कुछ कर सकता है,
बर्ड्स को थ्रेटन कर रहा है।
बिल्कुल, और ये जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं, कितनी अच्छी बात है ना कि पक्षी हजारों हजार मील उड़ करके वो आते हैं, और उनके पास पूरा उनका एक मैप होता है, रूट होता है पूरा, और वो उसी रूट को फॉलो करते हैं।
बिल्कुल।
कई बार ये होता है जैसे युद्ध हो या ऐसे कोई चीजें होती हैं, उस दौरान वो जब बहुत ज्यादा धुआं और इस तरह से, तो हो सकता है कि कभी इधर उधर हो जाएं, लेकिन वो रास्ता नहीं भटकते हैं।
They know their aim and they know where they have to reach, you know, the goal is always set. बिल्कुल, जाना ही जाना है।
उनको कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन उनका गोल पूरा सेट रहता है।
बिल्कुल।
और ये जो नेचर, मतलब प्रकृति और जो भी है, पशु पक्षी जीव जितने भी, जो एक दूसरे पे, मतलब उनका है कि अगर एक खत्म होगा तो दूसरे के लिए वो थ्रेट हो जाएगा।
बिल्कुल।
दूसरे का जीवन भी समाप्त हो सकता है।
एब्सोल्युटली अलका, इंसेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोटीन एंड एनर्जी फॉर बर्ड्स, स्पेशली ड्यूरिंग माइग्रेशन, जैसे आपने अभी बताया। अ स्कैसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज can lead to increased mortality rates for both adult birds and their young ones. It can also disrupt their natural behaviors, affecting their breeding success.
बिल्कुल, और ऐसे कई कारण हैं जो इस गिरावट का कारण भी बन जाते हैं, जैसे प्रकाश प्रदूषण भी, जैसे नॉइस की तो हम बात करते हैं, या हम पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक जो लाइट पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा जब रोशनी होती है तभी भी इन जो कीट पतंगे होते हैं इनको परेशानी हो सकती है। आवास विनाश जैसे कारण भी बहुत सारे हैं कि जो बहुत सारी आपकी जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, इनमें भी कीड़ों का मरना या फिर पक्षियों का, हम कहते हैं छोटी सी जो गौरैया होती थी वो हम अभी दिखती नहीं है।
एब्सोल्युटली, आई वाज कमिंग टू दैट, यू नो, वी हैव बीन एक्चुअली सीइंग द डिक्लाइनिंग ऑफ बर्ड्स इन आवर लाइफ टाइम, वी नो दैट।
बिल्कुल,
बट अलका, देयर इज होप। I think हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बट स्टिल वी कैन से दैट देयर इज होप। द 2024 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे कैंपेन एम्फसाइजेस प्रोएक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स, तो बहुत लोग हैं जो यू नो देयर प्रोएक्टिव,
छोटे से काम है लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण है, और वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो काम जो है ना वो सतत प्रक्रिया चलती रहती है, और प्राकृतिक वनस्पति की हानि और प्रवास मार्गों में पर गड़बड़ी न समस्या को और इन्हों सबने बढ़ा दिया है और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के बिना पक्षी अपने प्राकृतिक शिकारियों को खो देते हैं, जिससे कुछ कीड़ों की अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है, कई बार ये भी होता है, और जो पौधों के स्वास्थ्य और कृषि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा चक्र है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता
है। एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट अलका? वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन आवर ओन गार्डन्स एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एडिशनली मेंटेनिंग एंड कनेक्टिंग एरियाज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, प्रोवाइडिंग वाइटल फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज।
बिल्कुल, और जब हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि प्रत्येक क्रिया जो है वो मायने रखती है, चाहे आप किसान हो, माली हो या केवल प्रकृति प्रेमी हो, आप इन अविश्वसनीय पक्षियों और उनके जो कीट सहयोगियों की सुरक्षा में भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और हम आपको प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़ों के महत्व के बारे में प्रचार करने और अपने समुदाय में संरक्षण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
Exactly.
और हम सभी मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं और हम सब मिलकर कुछ न कुछ अवश्य कर सकते हैं। प्रयास छोटा ही क्यों न हो, मगर होना चाहिए। और रेनू, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जानने का और उनसे ये जानने का कि आज उनके पास हमारे लिए क्या विशेष है।
यस अलका, वी आर मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, वेयर द बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज जॉइन हैंड्स विद एनजीओस टू वर्क आउट आइडियाज फॉर अ बाइट फ्री लोकैलिटीज इन बेंगलुरु। द प्लान इज टू रिड्यूस डॉग बाइट्स एंड द इंसिडेंट्स ऑफ डॉग्स अटैकिंग ह्यूमंस। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike in Bengaluru is working with NGOs to understand animal behaviors and accept them the way nature has created them to strike ecological balance. Apart from animal birth control and vaccination measures, this new initiative by the municipal corporation will help create an atmosphere of coexistence. It has decided to celebrate a festival of dogs on October 17, involving the NGOs, resident welfare associations and animal caretakers. The motive is to create awareness about the nature of dogs by sharing stories of love and bonding with street dogs in different parts of the city. On the same day, on October 17th, a new program will be launched where the Paura Karmikas or municipality corporation workers will start feeding street dogs by bringing leftovers from hotels in the area. The municipal corporation has invited citizen volunteers to come forward and take part in all these initiatives. It is hoped that such measures will reduce the conflict between animal and human beings. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
रेनु, अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश और वहां पे देखते हैं कि जो आज का दिन है वो कैसे मनाया जा रहा है।
बिल्कुल,
बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरा के अवसर पर शिमला के जाखू मंदिर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश के कुल्लू में मनाए जाने वाले 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज कल से हो रहा है। 1660 से मनाए जा रहे इस उत्सव में देवी देवताओं की समृद्ध संस्कृति के दर्शन लोगों को एक साथ ढालपुर मैदान में होते हैं। कुल्लू का दशहरा पर्व परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। जब पूरे भारत में विजयदशमी की समाप्ति होती है, उस दिन से कुल्लू की घाटी में इस उत्सव का रंग और भी अधिक बढ़ने लगता है। कुल्लू में विजयदशमी के पर्व मनाने की परंपरा राजा जगत सिंह के समय से मानी जाती है। मान्यता है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह को रोग से मुक्ति देने के लिए भगवान श्रीराम अयोध्या से कुल्लू आए थे। दशहरे के एक दिन बाद शुरू होने वाले इस उत्सव में जिला प्रशासन ने इस बार 332 देवी देवताओं को दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे हैं। 25 देशों के सांस्कृतिक दल दशहरा उत्सव के दौरान जहां अपनी प्रस्तुतियां देंगे, वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिम्बा, देवता बिजली महादेव, माता भेखली सहित कुछ प्रमुख देवी देवता हैं जिनके बिना दशहरा उत्सव सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। माता हिडिम्बा के राजमहल में आने के बाद दशहरा उत्सव की तैयारी शुरू की जाती है। इसके अलावा दिन भर यहाँ देवी देवता भी भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। शाम के समय ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। भगवान रघुनाथ 7 दिनों तक ढालपुर के अस्थायी शिविर में विराजमान रहते हैं और 7वें दिन लंका दहन के साथ ही वापस अपने मंदिर की ओर लौट जाते हैं। ढालपुर मैदान में पहले दिन दशहरा उत्सव में देवी देवताओं का भव्य मिलन देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन अब दशहरा उत्सव में धीरे धीरे व्यापार भी होने लगा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देश भर से व्यापारी विभिन्न तरह का सामान बेचने के लिए आते हैं। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में भी 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश के कलाकार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा।
And Alka Mahanavami, the 9th day of the Navratri, is being celebrated across Jammu division today amid religious fervor and gaiety. The Mahanavami marks the end of the 9-day-long Navratri festival and fast. And for more, we have our correspondent Gulshan Raina.
Mahanavami is the 9th and the final day of Navratri festival, a 9-day Hindu celebrations dedicated to worshipping the 9 forms of Goddess Durga. Each day of Navratri holds unique significance, but Mahanavami is considered particularly auspicious as it marks the day before the grand celebrations of Dussehra. The 9-day-long deeply revered Shan Chandi Mahayagya organized by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board during Sharadiya Navratra for the universal peace and prosperity is being conducted today on a grand note with Puran Ahuti on the auspicious occasion of Mahanavami. Worth to mention that more than 3 lakh pilgrims paid obeisance at the river shrine of Shri Mata Vaishno Devi during the auspicious Sharadiya Navratri. Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has been providing free pony, battery car service and assistance in darshan to Divyang pilgrims during Navratri. The Shrine Board also made arrangement for free food for the pilgrims at Terracotta Marg, Prasad Kendra at Sanji Chhat and Bhairoji. For the ease and comfort of pilgrims, facilities like battery car, passenger, ropeway and helicopter services were available through both online and offline modes. Other special features were bhajans and devotional performance by the renowned artists of the country beside budding students of Shri Mata Vaishno Devi Gurukul during morning and evening Atka Aarti during these Navratras. Special pujas, cultural event and local fairs make the celebration here distinct. Lieutenant Governor Manoj Sinha, while extending his greetings and best wishes to the people, said that Mahanavami represents the trump of good over evil and marks the hope of a bright future. This is N. Gulshan Raina
for Parikrama from Jammu.
Now, dear listeners, we are going to take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
We are paying our tributes to freedom fighter, author, thinker and political leader Ram Manohar Lohia, who left us on 12th October in 1967. Lohia was born on 23rd of March 1910 at Akbarpur in the then Faizabad district of Uttar Pradesh.
His father was a great follower of Mahatma Gandhi, and at an early age itself, Ram Manohar leaned towards Gandhian philosophy. During school days, Lohia launched a campaign against textbooks which described Shivaji as a bandit king, and later joined protest against Simon Commission.
After completing graduation from Calcutta University, Lohia went to Europe for further studies. While in Europe, Lohia attended the League of Nations Assembly in Geneva. India was represented by the Maharaja of Bikaner, a well-known favorite of the British Raj.
Lohia took exception to this and launched a protest from the visitors' gallery. He sent several letters to editors of newspapers and magazines to clarify the reason for his protest. The whole incident made Lohia a recognized figure in India overnight.
Lohia helped organize the Association of European Indians and became the secretary of the club. The main focus of the organization was to preserve and expand the Indian nationalism outside India. Lohia wrote his PhD thesis paper on the topic of salt satyagraha, focusing on Gandhiji's socio-economic theory.
Lohia was attracted to socialism and helped lay the foundation of Congress Socialist Party in 1934. Lohia was arrested and sentenced to 2 years in prison when he wrote the article Satyagraha Now in Gandhiji's newspaper Harijan on June 1, 1940. He was mentally tortured and interrogated by his jailers, but in December 1941, he was released along with other leaders by British authorities in a desperate attempt to stabilize India internally.
During the Quit India movement in 1942, when prominent leaders were jailed Lohia carried out operations from underground. Lohia, along with freedom fighter Usha Mehta, broadcast messages in Bombay for 3 whole months from a secret radio station called Congress Radio before detection. He revived the movement in Kolkata and later fled to Nepal to evade the British. However, he was captured in May 1944. Lohia was taken to a prison in Lahore, but under Gandhiji's pressure, he was released.
As India's tryst with freedom neared, Hindu-Muslim strife increased. Lohia strongly opposed partitioning India in his speeches and writings. He appealed to communities in riot-torn regions to stay united, ignore the violence surrounding them, and stick to Gandhiji's ideals of non-violence.
Lohia comforted the Mahatma on partition issue and remained beside Gandhiji as a son would remain beside a father in the hour of crisis in the aftermath of independence.
After independence, Lohia made his indelible mark in democratic India as a great thinker and parliamentarian and a fighter for the cause of minorities, lower classes and women.
During his last few years, besides politics, he spent hours talking to thousands of young adults on topics ranging from Indian literature, politics and art. Lohia died on October the 12th, 1967 in New Delhi. He left behind no property or bank balance but prudent contemplations.
और अब खेलों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है।
एंड मूविंग ऑन टू पर्सनालिटीज,
बिल्कुल अब समय है उनकी उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की बात करने का जिनका या तो आज जन्मदिन है, जयंती है या फिर पुण्यतिथि है।
एंड टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू हेनरी जॉन डुशेंडॉर्फ जूनियर, आल्सो नोन प्रोफेशनली एज जॉन डेनवर, हु वाज एन अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकूस्टिक आर्टिस्ट ऑफ द 1970s एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट इन दिस डेकेड। ही हैज अर्नड 12 गोल्ड एंड 4 प्लैटिनम एल्बम्स विद हिज सिग्नेचर सॉन्ग्स टेक मी होम, कंट्री रोड्स, पोएम्स, prayers and promises and many more, but here let's listen into this beautiful song, Take Me Home, Country Roads.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shannon.